युग की डबल लाइट माउंट आबू से पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है, जिस प्रवाह के साथ में हम सबके बीच आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रेम मसन जी शांतिवन से हम सबके लिए यहाँ पधारे हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रेम मसन जी का परिचय विश्व सेवाधारी और विश्व के मालिक बनने वाला है। आज प्यारे बाबा ने आप फरिश्तों को रहम दिल के रूप में याद किया और आपने 1979 में इंदौर मध्य प्रदेश से मेडिकल कॉलेज से एमडी किया और कैंसर स्पेशलिस्ट आपने पढ़ाई को पढ़ा और विगत 35 वर्षों से आप प्यारे बाबा की सूक्ष्म वैज्ञानिक पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, योग के विभिन्न अनुसंधान कर रहे हैं। आप 1996 ग्लोबल रिसर्च सेंटर, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो माउंट आबू में है, उसमें आप ऑनरेबल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 8000 से अधिक पावर प्रेजेंटेशन पूरे देश विदेश में प्रदान किए और उनका मुख्य रुचिकर विषय रहा है पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थिंकिंग। ऐसे वर्तमान में आपका पीएमटीवी पर आसान बने जिंदगी सीरियल आ रहा है, जिसमें हम और आप उनसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूरिहान होते हैं। ऐसे सरल सत्य और सशक्त वक्ता को हम अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं और आपसे नम्र निवेदन है कि आज का विषय ब्राह्म संपूर्ण फरिश्ता स्थिति पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। भ्राता ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रेम मसन भाई।
ओम शांति। आप लोग जहां बैठे हैं यहां पर ही हॉल में, मुझे याद आ रहा बाप दादा भी यहीं पर आते थे पहले और हम लोग भी मिले हैं, फिर ओम शांति भवन और फिर नीचे वहां पर। तो मैं बाबा से नहीं मिला पर यहां पर याद आ रहा है, इसीलिए ये हॉल ऑलरेडी पावरफुल है, वाइब्रेशन देता है, शक्ति देता है। फरिश्ते का अर्थ ही है हल्का लाइट, जो सूक्ष्म वतन बनता है क्रिएट होता है वो केवल संगम पर होता है। इसका फंक्शन केवल इस समय होता है, सत्युग आने के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। जब ब्रह्मा बाप में शिव बाबा आए और पाठ शुरू हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप का संपन्न और संपूर्ण अवस्था आई, स्टेज आई, उसके बाद ही सूक्ष्म वतन शुरू हुआ। परमधाम और सूक्ष्म वतन में फर्क है, वहां का कारोबार और सूक्ष्म वतन का कारोबार अलग अलग है। परमधाम का कारोबार है एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी से पूरा काम वहां चलता रहता है। मैं भी एटॉमिक एनर्जी का और कुछ रिफाइंड फॉर्म होगा वो वहां पर चलता है। सूक्ष्म वतन का कारोबार लाइट से होता है, प्रकाश से होता है। और वहां पूरा खेल संकल्पों से चलता है। एक्शन नहीं है, केवल संकल्प अपने आप आदान प्रदान हो रहे हैं। व्यक्ति फील नहीं करता कि क्या हो रहा है। अब हमें अगर वो बनना है जो हमारा पहले का स्टेज है, ऊपर जाने के पहले वो स्टेज है हमारी फरिश्ता की। परमधाम में जाने के पहले, बिंदु रूप का अनुभव करने के पहले, ये हमारा टेम्पररी स्टेज है। एक तरह से कहें ये रिले स्टेशन है। बाबा ने इसलिए बनाया कि वहां जाकर हम देखते रहते हैं परमधाम में क्या हो रहा है और स्वर्ग का कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। एकदम ऊपर नहीं जा सकते तो ये बीच का स्टेशन बनाया। वहां पर ब्रह्मा बाबा खुद मॉडल बनकर खड़े हैं। उनका संपन्न और संपूर्ण स्वरूप देखकर हमें भी आता है कि ये पॉसिबल है। हम उनसे अपनी कंपैरिजन करते हैं और कोई भी मैसेज को लाना है, देना है, वहां से आता है। क्योंकि परमधाम में कुछ नहीं होता, वहां कुछ संकल्प भी नहीं है, इसीलिए जो मैसेजेस आते हैं वो सूक्ष्म वतन के द्वारा आते हैं। ब्रेन में भी एक ऐसा एरिया है, ब्रेन के दो एरिया हैं। एक है हमारा सोचने वाला ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, हायर ब्रेन, परमधाम, और एक है हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, भावना वाला ब्रेन, सूक्ष्म वतन। ये दोनों का काम आपस में चलता रहता है। जो भी खबर आती है देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो लोअर ब्रेन में जाती है, भावना वाला ब्रेन। हाइपोथैलेमस उसको कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, वहां पर खबर जाती है, वहां पर खबर का एनालिसिस होता है और वो खबर फिर हायर ब्रेन में जाती है, थिंकिंग ब्रेन में जाती है, बॉस के पास जाती है। वहां से खबर का एनालिसिस होकर डिसीशन वापस लोअर ब्रेन में आता है और वो फिर हम करते हैं। ये सब चीजें एक सेकंड से कम में हो जाती है, मैं कहूंगा नैनो सेकंड में हो जाती है, मिली सेकंड में हो जाती है। खबर गई, आई, एनालिसिस हुआ और हमने किया। अब सूक्ष्म वतन इसलिए क्रिएट किया गया कि हमें पहले अपने लाइट फॉर्म को एक्टिव करना है। शरीर में भी अलग अलग लेयर्स रहती हैं। एक है हमारा बाहर का शरीर, पांच तत्वों का शरीर, मसल्स, बोन्स, हार्ट, ये सब काम करते रहते हैं। और इसके डीपर लेयर पे रहता है हमारा सूक्ष्म शरीर। वहां पर कोई बोन्स और ये नहीं रहते हैं, केवल लाइट का घेरा रहता है, जिसको हम कहते हैं ऑरा, एनर्जी। पूरा गेम जो चल रहा है वो एनर्जी और मैटर का चल रहा है। एनर्जी लाइट एक्ट कर रही है और मैटर पर एक्ट कर रही है। ये भी मैटर है, बॉडी भी मैटर है, लाइट मैटर पर काम कर रही है। परिवर्तन होता जा रहा है शरीर में और इसमें भी, इसमें भी। कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। अभी तक हम सोचते थे ये सॉलिड है और ये एनर्जी है। इसमें भी परिवर्तन हो रहा है मेरे शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, आप में भी परिवर्तन हो रहा है। हर सांस को जब मैं ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, मेरे एटम्स बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं। 10^22 एटम्स बाहर जा रहे हैं और 10^22 एटम्स अंदर आ रहे हैं। मेरा आना यहां पर क्यों हुआ? हमारे हर सांस में लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स के एटम बाहर जा रहे हैं और हर सांस अंदर ले रहा हूं तो वो एटम कहीं से आ रहे हैं। अब आप लोगों के यहां क्यों आना हुआ? पानी इतना गिर रहा था, लोगों के थॉट्स चल रहे थे, कई लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया, मेरे साथ भी आने वाले थे वो भी ड्रॉप आउट हो गए, कई रोड तो बंद नहीं हो गया। अब ये क्या हुआ? थॉट चला, फिर बहन जी का फोन आया, कविता बहन का फोन आया, सुबह आना है। मैं नाश्ता कर ही रहा था, एक संकल्प आया था, फिर रुक गया, जाना है, देखा जाएगा जो होगा रास्ते में देखेंगे। अब क्यों पहुंच गया यहां, यहां पर क्यों पहुंच गया? आपके एटम्स आ रहे थे। हम सभी का मिलना कोई कारण होता है। परमधाम में हम जब रहते हैं तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, शरीर का हर एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है। हार्ट लंग को जानता है, लंग हार्ट को जानता है क्या हो रहा है। पूरा शरीर के ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर एक को मालूम है उसमें क्या हो रहा है। किसी को कहना नहीं पड़ता तुझे ये करना है, ऑटोमेटिक ये चलता रहता है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। इसी तरीके से हम सभी आत्माओं का भी प्रोग्राम वहां से फिक्स है। जब हम नीचे आते हैं हमारी एक एनर्जी लेवल रहती है, ऊर्जा रहती है, और वही एनर्जी हमें वापस लेकर जाना पड़ती है। अगर मैं 80% पर आया हूं तो 80% ही मेरी संपन्न अवस्था होगी। हरेक की 100% नहीं रहती, हरेक का डिपेंड करता है उसका पाठ कब शुरू हुआ। ऐसे ही जब मैं ऊर्जा लेकर आता हूं वही एनर्जी मुझे लेकर जाना पड़ती है। और एनर्जी क्या है? हम सब कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको सिंपल एक बहुत रियल एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर चार्ल्स कैंसर के डॉक्टर हैं, वो जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने। उन्होंने बहुत काम किया है कैंसर के ऊपर, इसलिए उनको एक अवार्ड मिलना था। फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आया, प्लेन लैंड हो गया। बाहर आए एयरपोर्ट पर, पूछा वो शहर कहां है जहां उनको जाना था, बोला 4 घंटे दूर है बाय कार। उन्होंने कार हायर की, चलाना शुरू किया। रास्ते में फिर तूफान आने लगा, जैसे आज आ रहा था, रात को आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, रास्ता खो दिया। जैसे तैसे एक जगह पहुंचे तो देखा एक लाइट जल रही है, वहां गए, दरवाजा खटखटाया, एक लेडी अंदर से बाहर आई, अंदर ले गई, चाय पीने लगे। और देख रहे थे कि वो लेडी चाय बनाने के बाद जब ये पी रहे हैं, वो लेडी एक केज के पास बच्चे को कुछ प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो देख रहे थे, बार बार वो कैंडल जलाकर प्रार्थना कर रही थी बच्चे के पास। उनसे भी रहा नहीं गया और प्रार्थना के बाद उससे पूछा, आप क्या कर रहे थे? लेडी ने कहा, मेरा बच्चा है उसको एक ऐसा कैंसर है जिसको केवल डॉक्टर चार्ल्स ही ठीक कर सकते हैं। उन्होंने सोचा वो लेडी ने कहा डॉक्टर चार्ल्स बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं वहां तक जा नहीं सकती, वो 4 घंटे दूर हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो आ जाए। डॉक्टर चार्ल्स को पहली बार विश्वास हुआ परमात्मा है, उनके आंखों से भी आंसू आ गए। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व को कनेक्ट होते हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा आने वाली सेवा केवल एक ही है, आने वाली सेवा, आने वाली मैं नहीं कहूंगा, आ गई। मेरा जो 3 साल का अनुभव है पिछला, केवल एक चीज काम कर रही है, बाकी कुछ चीज काम नहीं कर रही है। बाबा ने कहा आने वाले समय में कोर्स नहीं कराना पड़ेगा, कोर्स का फोर्स भरना पड़ेगा। ये बाबा के शब्द हैं, कोर्स का फोर्स भरना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, लोगों को सुनने का टाइम नहीं है, अनुभव कराना है। अब जो लोग आ रहे हैं, मैं भी वो, परमधाम में ज्यादा रुकेंगे या द्वापर के बाद आएंगे, और उन आत्माओं को सत्युग त्रेता का कुछ लाइकिंग नहीं होगा, और उनका लाइकिंग केवल एक होगा, मुझे शांति चाहिए। और वो मैं अब देख रहा हूं, लोगों की रिक्वायरमेंट केवल एक आ रही है, शांति। अब आप उनको प्यार दो, शक्ति दो, प्यूरिटी दो, नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव केवल परमधाम का है, उनका अनुभव 2500 साल का केवल साइलेंस का है, उन्होंने कभी उतर के देखा ही नहीं सत्युग त्रेता क्या है। तो उनका अनुभव क्या है, तो हमें क्या देना पड़ेगा। अब वो आत्मा आकर बैठे और सुने तो क्या कहेगी। इसीलिए बाबा ने कहा नब्ज देखकर ज्ञान देना है। जब तक आपको पल्स देखना आना आएगी नहीं, आने वाला समय में आप सेवा नहीं कर सकते। पर्चे वाली सेवा चली गई, कार्ड वाली सेवा चली गई, अब क्या आ गया। कल भी रमेश भाई बहुत अच्छी क्लास करा रहे थे भट्टी में, उन्होंने कहा आने वाला समय डिजिटल है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया डिजिटल इंडिया, और आप सभी ने देखा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उस एक दिन में 197 से ज्यादा कंट्रीज जुड़ गई, एक दिन में पूरे वर्ल्ड में यूएनओ में भी योगा लोग कर रहे थे। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, पहले कोई योगा को सुनना नहीं चाहते थे, और सडनली 197 कंट्रीज में और यूएनओ में भी योगा हुआ। ये क्या हो रहा है, जो संकल्प बाबा ने यहां बैठकर क्रिएट किए वो अब होता जा रहा है। बाबा 2 बजे उठकर वाइब्रेशन देता था, और वो वाइब्रेशन अब होते जा रहे हैं। अब आने वाले समय में डिजिटल होगा, डिजिटल का अर्थ है एक फोन पर सब कुछ होगा, मैसेज देना है व्हाट्सएप पर दिया चला गया, इतने लोगों तक किया, एक क्लास यहां कराई डाउनलोड हुई पूरे वर्ल्ड में चली गई, क्लास अभी हुई 5 मिनट के बाद फोन आने लगे क्लास सुनी, क्या हुआ, कोई पर्चा नहीं था। ये वो समय है, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अपनी मेथडोलॉजी को, टूल को, टेक्निक को बदलना पड़ेगा, और वो टूल और टेक्निक यहां है, और वो टेक्निक है हमारी वायरलेस वाली। बाबा ने कहा वॉइसलेस वाला ही वायरलेस बनेगा, कौन ट्रांसफर कर सकेगा, वाइब्रेशन कौन दे पाएगा, फरिश्ता कौन बनेगा। अब आप इस पर चिंतन करो, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सांस सांस को छोड़ें, सब बातों को छोड़ दें। मैं एक लाइट हूं, फरिश्ता हूं। अपने शरीर के चारों तरफ लाइट का अनुभव करें, कार्ब का अनुभव करें। पूरा शरीर लाइट से घिरा हुआ है, वो लाइट मेरा वाहन है। मैं इस पर बैठकर कहीं भी विश्व में जा सकता।
अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। तेरी नस नस लोहाकार, तू है आग, तू भाग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग 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 मिलखा।
वेरी गुड, वेरी गुड। फरिश्ता, फरिश्ता कौन है? जिसका इमोशनली कहीं भी अटैच नहीं है। रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, पर उन रिलेशनशिप में ट्रस्टी का गेम खेल रहा हूं। घूम फिर कर बात एक पॉइंट पर आती है, मेरे सर्व रिश्ते एक बाप से हैं, पर मैं अपना रोल निभा रहा हूं। रोल निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं अपने को अटैच नहीं कर लूं। अटैचमेंट का अर्थ है मैं समझ रहा हूं मेरा है, मेरा है। हम सभी जानते हैं ये टेम्पररी दुनिया है। अब हम क्या चाहते हैं टेम्पररी दुनिया में? हर चीज परमानेंट चाहते हैं, वो होगा नहीं। एक टूरिस्ट आया इंडिया में, एक योगी के यहां गया। योगी की झोपड़ी में केवल दो चीजें थी, लालटेन और चटाई। टूरिस्ट ने कहा, आपका फर्नीचर कहां है? योगी ने कहा, आपका फर्नीचर कहां है? टूरिस्ट ने कहा, मैं तो टूरिस्ट हूं। योगी ने कहा, मैं भी टूरिस्ट हूं। अपनी बाहर की आवरण से, बाहर की पोजीशन से, टाइटल से, विशेषता से अलग होकर काम करना। मेरी विशेषता भी मेरी नहीं है, यह फाइनल सूक्ष्म अभिमान है। हमारा सभी का फाइनल पेपर वही होता है, उस सूक्ष्म अभिमान का त्याग करना। बाबा ने दिया है, बाबा मेरे से करा रहा है। अगर आज भी मैं सोचता ऊपर जा रहा हूं, फिर डर आता, घबराहट आती, चिंता आती। मेरे को थॉट आया, मेरी क्लास नहीं है, बाबा करा रहा है, जो होगा देखेंगे। तो वो डर और घबराहट निकल जाती है। चिंता घबराहट तब आती है, तनाव तब आता है, जब हम सोचते हैं मेरा है। उस मेरेपन को छोड़ना ही फरिश्ता बनना है। वो एक बार गेम खेलना आ गया, कभी भी मैं किसी के प्रभाव में न आऊं, खुद के प्रभाव में भी न आऊं, न दूसरे के प्रभाव में आऊं, तो तब हम हल्के होते हैं। फरिश्ते का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? लाइट, हल्का। हल्का कहां से होते हैं हम? हल्का होते हैं शरीर से, हल्का होते हैं मन से। मन से भारी क्यों हो जाते हैं? दो चीजों से ही होते हैं। बाबा ने जो कहा, एक मेरापन, मैं और मेरा, और दूसरा होता है व्यर्थ संकल्प। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का जो मैं देख रहा हूं, जितने भी फोन आते हैं टीवी को देखने के बाद, 10 में से 8 का रहता है प्रॉब्लम व्यर्थ संकल्प, और वो हमारे में भी ज्यादा हो गया है, और उसके कारण निराशा डिप्रेशन बढ़ रहा है। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? जब हमें ये लगता है ये मेरा है, और दूसरा आता है क्या होगा। हरेक का सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? हर आत्मा का डर कौन सा होता है? सबसे बड़ा डर कौन सा है? क्या होगा, मेरा पद क्या होगा, मेरे को सजा तो नहीं मिलेगी। तो हम भी कभी कभी बिना कारण से अपने को घेर लेते हैं। ज्यादातर मैंने प्रॉब्लम देखा हम लोगों का, कि कहीं ना कहीं वो ज्ञान की क्लियरिटी न होने के कारण उस एरिया में फंस गए हैं जहां जाना नहीं था। आगे बढ़ने का और रुकने का कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं मैं उस एरिया में चला गया जो काम का नहीं है। ज्ञान में आने के बाद भी हम उन एरिया में चले जाते हैं जो टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मेथड है और एक ही टूल है और एक ही टेक्निक है, घूम फिर कर वही है। और वो क्या है? अशरीरी बनकर परमधाम जाकर बाबा से हलो करना, बाबा से बात करना और वो वाइब्रेशन लेकर लोगों को देना, वही मनसा सेवा है। हमारा मेन एरिया वही है। मेरा मेन एरिया मुझे अशरीरी होकर वहां जाना है, टारगेट को हिट करना है, वाइब्रेशन लेना है, लोगों को देना है, वो हमारा मेन है। अब क्या हुआ, वहां न जाके हम इधर उधर जाते रहते हैं। एक माता आई 3 साल पहले, बोली बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोली क्या करूं, बाबा के दिन थे, कोई कहता है परमधाम जा, कोई कहता पेड़ के नीचे बैठ जा, कोई कहता है रू रुयान कर, कोई कहता है बीज रूप बन जा, कोई कहता है बाबा के कमरे में जा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं कर, कमरे में जाके सो जा, बाबा जिस दिन आएगा बता देगा क्या करना है। दादी गुलजार भी क्या बोलती हैं, दादी गुलजार भी हर क्लास में, जब तक बाबा के दिनों में क्लास, बाबा के दिनों में वन डे बिफोर कराती थी, तो वो यही कहती थी 4 पेज मुरली के याद न आए, 4 पेज मुरली के याद न आए तो वरदान याद रखो, स्लोगन याद रखो, और वो भी याद नहीं आए तो केवल मेरा बाबा याद रखो। हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ले रहे हैं। टू मेनी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? अगर मेरा प्रोसेसर कंप्यूटर का काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? इनपुट बहुत है, आउटपुट है ही नहीं, तो क्या होगा? कंप्यूटर हैंग हो। और वो ही हो रहा है। मैं आपको सीक्रेट बता दूं, मेरा सीक्रेट बता रहा हूं, $1 million सीक्रेट बता रहा हूं, फीस नहीं ले रहा हूं, हैंगओवर इसी के कारण हो रहा है। अब वो समय है विश्व का जब साइकिल एंड तक आ गया, अब टू मेनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है ही नहीं। बाबा ने पूरी क्लियरिटी दे दी है क्या करना है और कैसे करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को लो जो जरूरी है, और जो जरूरी नहीं उसको छोड़ दो, छोड़ दो। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। मेरे को भाइयों की भट्टी में एक भाई ने पूछा, सब कुछ क्लियर है फिर भी वो नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या करता है तू? कहता है मैं सेवा करता रहता हूं, करता रहता हूं, सेवा नहीं करूं तो प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम कहां था उसका? मन स्थिर नहीं था, मन और बुद्धि काम नहीं कर रही थी, भाग रहा था। घुड़सवार क्या करता है? घोड़े पर बैठकर टक 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 टक, दादी जानकी के शब्द हैं। घुड़सवार क्या करता है? घोड़े पर बैठकर टक 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 टक, मैंने ये किया ये किया ये किया, फोटो मेरा आना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं छपे तो टेंशन आता है। हाथी वो क्या करता है? महारथी तीर, आया गया। फरिश्ते का भी क्या अर्थ है? आया, किसी को पता नहीं लगे वो आया था। एक अच्छा लीडर कौन है? एक अच्छा लीडर कौन है? शिव बाबा में हम सभी देखते हैं, आता है दिखाई नहीं पड़ता है, काम करके चला जाता है। वो ये नहीं कहता मैं बॉस हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कल दादी ने भी और संतोष बहन ने भी यही क्लास कराई। उन्होंने कहा ये वो समय है जब आप समान क्रिएट कर दो, सेकंड लाइन थर्ड लाइन खड़ी कर दो। 15 साल 20 साल से मैं आ रहा हूं, वही का वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था, कोई फायदा नहीं। मेरा काम दूसरा करने लग जाए तब सोचना मैं राजा हूं। आप समान 3-4 को खड़ा कर दो तो क्या होगा, मेरा जो बोझ है वो कम हो जाएगा। मैं वही करूंगा जो इस समय जरूरी है। कर्मातीत का अर्थ क्या है, कर्म कर रहा हूं, कर्म का बोझ नहीं है, कर्म का रिजल्ट मुझे खींचे नहीं। कर्मातीत का अर्थ दो है, कर्म का अतीत मेरे को पुल नहीं कर रहा है और कर्म का रिजल्ट मुझे पुल नहीं कर रहा है। दोनों कर रहा हूं, सोच रहा हूं, कर रहा हूं, डन, गायब। बड़ी दादी हमेशा मेरे को याद है, दो चीजें सीखी थी बड़ी दादी से, यहीं बैठकर सिखाती थी। कभी भी सिद्ध नहीं करना है, कभी भी जिद नहीं करना है। हम लोगों का ज्यादा एनर्जी कहां जाता है, सिद्ध करने में। कई बार कई लोग कहते हैं वो भाई पूछ रहा है 5000 वर्ष कैसे होते हैं, डायनासोर भी हैं, ये भी हैं, जानवरों का क्या होगा। सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है और जिद भी नहीं करना है। जो हो रहा है होने दो, आपको विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, सिद्ध नहीं करो। मेरे को याद है एक बार एक जगह गया और एक जगह हेल्थ मेले में एक बैनर लगा हुआ था इंग्लिश में। एक व्यक्ति आया वहां का, कहता इसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा ये है, हिंदी में करके बताया। उसने कहा ये नहीं ये है। मैंने कहा ठीक है। फिर वहां की टीचर बहन ने कहा यहां ऐसा ही है, इस राज्य के नेचर ऐसा ही है। मैं समझ गया। अगले दिन एक और आया, कहता इसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा आप बताओ। उसने बताया ये है। मैंने कहा बिल्कुल राइट, बात खत्म। मैं अपनी एनर्जी काय को ब्लॉक करूं, मेरे को वहां एनर्जी लगाना है जहां जरूरत है, और मेरी एनर्जी लगाने का स्थान है यहां से वहां जाना, लोगों को वाइब्रेशन देना। वो मेरा मेजर टारगेट है, 95%। 5% मैं काम कर रहा हूं तो उस एरिया को अगर फोकस करूंगा तो तब लाइट आएगी। फरिश्ते का अर्थ ही है लाइट। सूक्ष्म बतन चल ही रहा है लाइट पर और आधार है उसका संकल्प। उसके ऊपर जाते हैं तो एटॉमिक एनर्जी होती है, बिंदु होता है, वहां कोई संकल्प नहीं होते। वहां सब लोग अपने अपने जगह जाकर बैठ जाते हैं, लटक जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। इसीलिए आजकल लोग क्या चाहते हैं, परमधाम का नेचर क्या है, फ्रीडम। मेरे को कुछ नहीं बोलो, बोला तो प्रॉब्लम। तो आजकल लोगों का नेचर भी क्या हो गया है, किसी को कुछ नहीं बोलो। कई लोग आकर बोलते हैं कैसे नहीं बोले, बोलो तो प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा क्या है, कर कर। तो हम अनवांटेड एरिया में एनर्जी न लगाएं। मेरे ये ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, नहीं चलेंगे, हर एक का रोल है, अपना अपना है। नहीं उसको ज्ञान में लाना, अरे कैसे ला। तो आधी एनर्जी खुद को नहीं चला रहे हैं, उसको चलाने में लगा रहे हैं। तीसरा है अपने को सिद्ध, ये भी नहीं करो कि मैं ये हूं, मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरा योग अच्छा है, मैं अभी अभी पुरुषार्थ करके आया, वो भी नहीं बताना है किसी को। अपनी हेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में और अपने पुरुषार्थ के बारे में लोगों को मत बताओ। अंदर ही अंदर करते रहो। हेल्थ के बारे में बताओगे, मेरे पास कई आते हैं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये कैंसर है, ये कैंसर है, हर एक को बोलेंगे तो क्या होगा, मेरे को ये कैंसर है, ये है, ये है, मेरी शुगर कंट्रोल ही नहीं आती, तो क्या हो रहा है, खुद कह रहे हैं मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आती, तो संकल्प क्या गया, हाँ नहीं आती, जो आप दे रहे हो वही आ रहा है। मेरे को ये कार अच्छी नहीं लगती, तो क्या होगा, भगवान सुन लेगा, कहेगा इसको अच्छी नहीं लगती तो इसको दूसरी कार देना ही नहीं। जो है मेरा रोल वो बहुत अच्छा है। कई बार कई भाई बहन कहते हैं हम वहां मधुबन आ जाएं तो बहुत अच्छा, क्यों आना चाहते, वहां सब नेगेटिव लोग हैं, तो क्या होगा यहां आने पर भी, अगर मैंने वहां परिवर्तन नहीं किया तो यहां भी नहीं किया। योग लगाने आ रहा हूं, बहुत अच्छा आओ, पर वहां से भाग कर आ रहा हूं कुछ नहीं होगा, भागना नहीं है, जिस जगह मेरा पार्ट है वहीं उस पार्ट को अच्छी तरह प्ले करना है और हरेक के संस्कार को समझ लेना है, और हरेक के संस्कार अलग अलग है और उन अलग अलग संस्कार में रहना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता क्या होता है, उड़ता रहता है, हल्का है, लाइट है, किसी तरह का वजन नहीं है, तो व्यर्थ संकल्पों का बोझ भी हमें कम करना पड़ता है। और उसमें मेन है कि मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, जो दिया गया, जैसा दिया गया, जहां दिया गया, बहुत अच्छा है, कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कभी कभी कई लोग बहुत कंपेयर करते हैं, अरे वो मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, खुद से कंपैरिजन करो, अगर कंपटीशन करना है तो खुद से कंपटीशन करो, मेरा कौन सा एरिया वीक है, कैसे करेक्ट करना है, दूसरा जो कर रहा है करने दो, और बल्कि मजे से देखो, उसको साक्षी होकर देखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक शब्द यहां डाल दो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किसी ने कुछ कहा, बहुत अच्छा, और भावना हर्ट हुई तो हम ज्ञान से बाहर हो जाते हैं, पर ज्ञान क्या रहता है, लाइट, डबल लाइट का अर्थ क्या है कि मेरे को ज्ञान क्लियर है, भावना ठीक है, पर हर काम में अगर भावना से करूंगा तो प्रॉब्लम आएगा। हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं, किसी से नहीं लेना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, डिसीजन खुद लेना है। बाबा भी डिसीजन नहीं देता है, बाबा ने एक मुरली में कहा मैं किसी को डिसीजन नहीं देता, और यहां तक का मैं जो जो कर रहा है वो ड्रामा के आधार पर कर रहा है। तो हमें क्या बनना है, अगर लीडर बनना है, राजा बनना है, मेरी निर्णय शक्ति काम करना चाहिए, सोचो सोचो और डिसीजन लो, जो आपको करना है करो, जो अच्छा लगता है करो, अपने को बांध मत दो। कभी कभी कई लोग कहते हैं आपका ब्रह्मा कुमारी क्या मठ है, पंथ है क्या, हमारा ज्ञान कोई मठ नहीं है, पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हमारा ज्ञान पूरे विश्व से कनेक्टिविटी का है, हम लोग ओपन है, हम लोग क्या कर देते हैं, अपने को बांध देते हैं, यहां नहीं जाना। एक बार दादी के पास एक भाई आया, एक व्यक्ति आया, बड़े गुस्से में था, यहीं बैठी थी, दादी ने दादी को कहा क्या आप सिखा रहे हैं। बोला क्या हुआ। बोला आपके यहाँ मेरा छोटा भाई आता है और वो शादी में मेरी लड़की की शादी थी और शादी में आया था, मैंने उसको कहा खाना खा, उसने जेब में से केला निकाल कर खाने लगा। दादी ने कहा ये तो गलत है, उस भाई को डांटा जिसने खाया। क्यों? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, कहां हमारी बुद्धि अटक रही है, लटक रही है, अटक रही है। एक हेल्थ मेले में एक छोटी बहन आई, उसकी मासी यहां ज्ञान पे थी और मेले में थी। वो आई 16 साल की लड़की, जीन्स पहनी हुई थी और कॉलेज की लड़की थी, बायोलॉजी पढ़ी हुई थी। उसने कहा मैं ये हार्ट वाला मॉडल बताऊंगी। मैंने कहा बता। उसको एक्सप्लेन करने के बाद वो बताने लगी और बहुत अच्छा बता रही थी। अगले दिन रोते हुए आई, मैंने कहा क्या हुआ। बोला वो भाई ने मेरे को डांट दिया। मैंने कहा क्यों डांटा। उसने मेरे को कहा जीन्स की पैंट बदल के आ, बाल ठीक करके आ। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा कितने साल से ज्ञान में है। 15 साल से। पहला लेसन क्या है आत्मा का, तूने क्या देखा, जीन्स को देखा। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणा में अगर मेरा सोल कॉन्शियस है ही नहीं तो मैं थ्योरी बोलते रहो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं होगा। जब तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, जब तक मेरा मेल और फीमेल से भी ऊपर उठकर काम कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं मालूम मेल क्या है फीमेल क्या है, उससे ऊपर उठकर काम कर रहा हूं, तब मैं कहूंगा मैं सोल कॉन्शियस हूं। किसी से भी बात करना है खुला करो, आंख से आंख मिलाकर करो, डर क्यों रहे हैं। नहीं तो एक भाई का मुझे याद है, वो इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू लेने वाली बहन थी और वो ऊपर ही ऊपर देखे जा रहा है। अब जबकि देखना था, हमें सिखाया जाता है जब आपको इंटरव्यू देना है आंख से आंख मिलाकर बात करो, उसका इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि सोल कॉन्शियस हमने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है, उसको अप्लाई करो। ये समय वो है, लास्ट पॉइंट धारणा का है। ज्ञान और योग हो गए, अब वो आगे बढ़ेगा जो धारणा में नंबर वन है। वाइब्रेशन वो ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसपेरेंट वो बनेगा, फरिश्ता यानी ट्रांसपेरेंट लाइट, ट्रांसपेरेंट वो बनेगा जो अंदर बाहर एक है। मैं यही फिनिश करूंगा, अंदर बाहर एक है। मैं जो बोल रहा हूं वो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं कर नहीं रहा हूं कोई नहीं सुनेगा। मैं बहुत अच्छा भाषण दे रहा हूं, स्लाइड दिखा रहा हूं और गुस्सा कर दिया, माइनस में गया। आज लोग स्लाइड नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं ये जो बोल रहा है अंदर से है कि नहीं है। लोग आजकल स्कैनिंग करते हैं, हर एक के पास पैट स्कैन लगा हुआ है, एमआरआई लगा हुआ है, सीटी स्कैन लगा हुआ है, वो देखता रहता है ये झूठ बोल रहा है कि सच्चा बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो वो लोग पकड़ लेते हैं, और सच्चे बोल रहे हो तो वो देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो हमारे वाइब्रेशन का अर्थ है जो बोल रहे हैं वो संकल्प शक्ति दे रहे हैं लोगों को। जो व्यक्ति यहां आ रहा है सेंटर पर क्यों आ रहा है, वो तो वहां भी देख सकता था, पीएम टीवी पर भी देख सकता है मुरली। यहां क्यों आ रहा है, अनुभव करना चाहता है। जब तक हम मुरली में उसको अनुभव नहीं कराएंगे कुछ नहीं होगा। आने वाला वो समय है, एक मिनट में आया, कहेगा शांति की अनुभूति कराओ, कराओ, गया। मुक्ति और जीवन मुक्ति की सील लगाना पड़ेगी, ये वो समय है। और अगर हम नहीं करा पाएंगे तो इसका अर्थ है हमें ठीक करना, अपने को ठीक करना। तभी घर घर में बाबा के सेंटर बनेंगे। बाबा ने कहा हर गली में सेंटर होगा, यानी क्या, आप लोग ही, हम सभी, जहां आप रहते हो वो सेंटर हो जाएगा। क्योंकि आप वहां वाइब्रेट कर रहे हो, पूरे मोहल्ले को शक्ति दे रहे हो, लोग कहें आपके आने से खुशी लगती है, तब मैं कहूं फरिश्ता हूं। मेरे आने से शांति हो रही है, फरिश्ता हूं। तो कहीं भी भोज को लेकर न चलें। और लर्न टू से नो का अर्थ है उन चीजों में मत जाओ जहां काम का नहीं है। मैंने ये सीखा, एक पकड़ लिया, जो चीज मेरे लेवल की नहीं है छोड़ दो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं, मैं केवल डॉक्टर हूं, मेरा काम है टेक्निकली पेशेंट को देखना और मदद करना। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा काम नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो चीजों को हम हाथ में न लें जो हमारे काम की नहीं है, और वो एरिया को बढ़ाएं जो आपके काम की है। और हर आत्मा में एक गुण पावरफुल है, हर आत्मा में एक शक्ति पावरफुल है, उसको पकड़ लो और उस गुण को बढ़ाते जाओ। जैसे ही वो गुण बढ़ेगा दूसरे गुण आ जाएंगे। उस गुण को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव कम होता जाएगा। नेगेटिव कम नहीं करना है, मैं कहूं मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। लॉर्ड गौतम बुद्धा से भी पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं मेरे को गुस्सा नहीं आए। मैं उनको कहता हूं गुस्से का कारण क्या है। जब तक कारण ठीक नहीं होगा तो गुस्सा कहां ठीक होगा। जब तक हम उस कारण को नहीं ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो सलूशन कहां से आएगा। मैं कहूं गुस्सा नहीं आए और आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए खत्म करते हैं। कौन आए मेरे बात? अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चलिए, हाँ अकेले का दादी ने उसको कहा युक्ति युक्त चलना है। वहां केले निकालने की जरूरत नहीं थी, वहां क्या था, हाँ भाई साहब खा लेता हूं बस। अब वो थोड़ी देखेंगे तेरे को। हम क्या करते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, हम नहीं खाते हैं, कोई चाय नहीं खाते हैं। अरे मत लो ना, कोई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा, मत लो। एकदम रिजेक्ट करते हैं तो लोग कहते हैं आप, प्रॉब्लम आता है। और आज 2015 में अगर इस तरह की हम नेगेटिव बातें करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। हमें युक्ति युक्त चलना है। मत खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना है, मत खाओ, पर रिजेक्ट नहीं करो। खाने को किसी को रिजेक्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसको प्यार से पहले से हैंडल करना सीखो। जहां जा रहे हो पहले से कुछ ऐसी मेथड करो जो आप लोगों के साथ बैठकर खाओ। अपना खाना ले गए, कोई भी है बना के ले आया, प्लेट उनके साथ बैठकर खा रहे। मैं भी जाता हूं कई फंक्शन में जाता हूं, शादियों पर जाता हूं, पहले से खाना बनकर टिफिन में आ जाता है, लेकर बैठ के उनके साथ खाता हूं। किसी को लगता ही नहीं कि ये नहीं खा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं एकदम। पानी नहीं, अरे मत पियो ना, प्यार से बोल दो अभी नहीं पीऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। प्यार से कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कहेंगे फिर आते ही क्यों हो, फिर आओ मत, फिर सेवा के लिए क्यों जाते हो उनके पास बोलने, आप आओ। एक तरफ हम ड्वेलिटी कर रहे हैं तो ड्वेलिटी नहीं करें, प्यार से लोगों को डिग्निटी रिस्पेक्ट दें। आज की 21वीं सदी में 2015 में किसी की डिग्निटी को हर्ट किया तो प्रॉब्लम आएगा। जो टीवी पर हम देख रहे हैं, टीवी पे हर दिन प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ने भी कुछ बोल दिया और उस एक बोल के कारण उसको माफी मांगना पड़ी कि नहीं मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था। तो हम अपनी बोल को रिस्पेक्टफुली बोलें, किसी को भी हर्ट नहीं करें। कभी ये नहीं सोचें ये लोग मेरे से छोटे हैं, हम बहुत बड़े हैं, ऐसा कभी नहीं करें। वो भी हमारी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, हमें कोई उससे मतलब नहीं। कभी कभी लोग आते ना लेकर आते हैं, कहते हैं अरे सर ये डॉक्टर है, ज्ञान में आ गया है, सुबह उठता अमृत वेले, नियम फॉलो कर रहा। अरे मैंने कहा ये बोलने की क्या जरूरत है, ये ज्ञान में है ये ज्ञान में नहीं है, ये भी पाप है ना। परमात्मा की हर कोई संतान है, 7 बिलियन आत्माएं उसकी संतान है, तो हम क्यों उसको लेबल कर दें कि ये पापी हैं और ये पवित्र हैं? ये कभी नहीं करें। हर आत्मा का अपना हक है, परमधाम में हर आत्मा लटकी हुई है, उसका हक है, चाहे वो किधर है, गरीब है चाहे कोई भी है, हरेक का हक है। उस हक की डिग्निटी को हमें देना है, चाहे वो कोई भी आत्मा हो। इसलिए हमेशा बाबा ने कहा हमारे बोल क्या होना चाहिए, रॉयल, रॉयल। राजा के बोल क्या होते हैं, रॉयल, किसी को भी बोले रॉयल, तो तब हमारी कनेक्टिविटी रहेगी। चलिए कुछ और, कोई तो क्वेश्चन नहीं, टाइम, मेरे को टाइम का कॉन्शियस रहता है। तो फरिश्ते का अर्थ क्या हो गया, हल्का, मन से भी हल्का। और कुछ समझ में नहीं आए, कोई मेथड काम नहीं करे तो क्या कर दो, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, कोई इमोशनल काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें, सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का अर्थ क्या है, सरेंडर। जब सरेंडर हो गया तो क्या होगा, जो कोई बोलेगा कुछ, किसी ने मारा तो कहां जाएगा, प्रॉब्लम कब आता है, जब सर हम कुछ नहीं, सरेंडर हो गया तो कुछ नहीं होगा, सामने वाला भी झुक जाएगा, वो भी आपकी बातें मानना शुरू कर देगा। खाने का भी बात, हम लोग जाते हैं हर जगह सीआरपीएफ में रेगुलर लेक्चर लेते हैं, वहां भी वो लोग चाय, ये आराम से प्यार से, इतनी अच्छी तरह हमारी उनसे दोस्ती है कि हर महीने वो लेक्चर के लिए बुलाते हैं, और नक्सलाइट एरिया के पुलिस ऑफिसर आते हैं, उनसे भी हम इतनी प्यार से बात करते हैं। कोई ज्ञान व्यान नहीं देना, उनके क्वेश्चन का आंसर देना। वो कहते हैं हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम है मारना और पकड़ना, या खुद मरेंगे या पकड़ेंगे, उनके दो ही काम रहते हैं। अब वहां उनको कुछ काम नहीं आता, क्या काम में आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो तब हम उनको हल्का करते हैं बात करके। कोई स्लाइड नहीं देते, कोई लेक्चर नहीं देते, क्वेश्चन, क्वेश्चन बता और आंसर, क्योंकि उनको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो वो हमें देना पड़ता। सरेंडर का अर्थ क्या हुआ, जब सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है, बाबा कमांड संभाल लेता है। अब एंड करता हूं, ये वो समय है जब बाबा ने कमांड संभाल ली है, उसको दे दो वो करने देगा, उसको जो करना है करने दो। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया, पांव को हिलाना था, सब महारथियों ने उसके पांव को हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। अंगद आया वापस अपने दोस्तों के पास, बोला अंगद अरे बड़ा टेंशन हो गया था, तूने पांव रखा, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मां को तो खो दिया था। अंगद ने कहा मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या न हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, तो हमारा काम भी क्या है, पांव रखना। स्वर्ग हमें बनाना है क्या, स्वर्ग हमें बनाना है, स्वर्ग बनाने का काम उसका है, हम तो केवल उसके काम करने वाले वर्कर हैं, जो वो बोलेगा करते हैं। तो काय का टेंशन लेना, सेवा का भी वो करेगा, जहां कराना है, जिधर करना है, जिसको बोलना है आ जाता है। अगर आप संकल्प वाइब्रेट कर रहे हो, जो व्यक्ति से आपको काम है वो आ जाएगा, मैं तो देख रहा हूं, जो चीज आपको चाहिए आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये वो समय है, उसका यूज करना सीखो, अप्लाई करना सीखो, तो तब बाबा आता है। नहीं तो बाबा सोचता अरे ये कर रहा है ना, बहुत बुद्धि लगा रहा है, करने दो, मेरी बुद्धि है, कर 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 भाग भाग, तो बाबा रिलैक्स करता रहता है जाके ऊपर, वो देखता रहता, वो मजे करता है, हम लोग फोटो, जबकि हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है, आए थे जीरो और जाएंगे जीरो, फिर भी पकड़ 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 छोड़ेंगे ही नहीं, मत छोड़ो, छोड़ोगे तब तो वो लेगा कमांड, श्री कृष्ण ने कमान संभाली, अर्जुन खेल रहा था। अर्जुन को कहा तेरा काम है लड़ना, बस तू ये मत देख क्या हो रहा है, वो मेरे हाथ में है। चलिए आकाश के उस पार खड़े हो जाएं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहन जी को बहुत बहुत थैंक्स, शुरू में ही पकड़ लिया उन्होंने, फर्स्ट डे को ही।
ओम शांति। बैठ जाइए सभी। टूल, टारगेट और टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैटर, दोनों डबल लाइट हो गए। हाथ उठाएं जो फील कर रहे हैं डबल लाइट। हमारी प्रभा दीदी के यहाँ प्रतिदिन ये फिजिकल एक्सरसाइज इस प्रकार की होती है और उनकी हार्दिक इच्छा थी यहाँ भी प्रतिदिन चले। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के पास ना पहुंचे ये हो नहीं सकता। तो प्रतिदिन की भांति भ्राता जी ने हमें डबल फरिश्ता बनाने के लिए जो हमारी एक प्रैक्टिस छूट रही थी उसको भी लिंक किया और हमें जो टूल, टारगेट और टेक्नोलॉजी दी है कि हम हल्के रहें। हल्के होने के लिए हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। जिस एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। स्पेशलिस्ट बनाते हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आज ब्राह्मण जीवन का जो कैंसर है वो वेस्ट है, उसका स्पेशलाइजेशन आपके द्वारा हमें मिला। आपके जो 8000 लेक्चर हुए उसकी एक बानगी हम सब ब्राह्मणों को पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल, हम सबको पर्पसफुल एनर्जी आपके द्वारा हमें मिली, और साथ ही साथ मैं इतना
एक कर वो देता हूँ जी। अभी जितनी भी भट्टी हुई, दादियों ने कराई, भाइयों ने कराई, सबने टारगेट लिया था पॉजिटिव थिंकिंग का। हरेक ने मेंशन किया कि ये वो समय है जो पॉजिटिव थिंकिंग का। और मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे बड़ा वीकनेस व्यर्थ संकल्पों का है, और उसको करेक्ट करना है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। न चाहते हुए भी वो हो रहा है, लोग कह रहे हैं मैं ठीक हूं, फिर पता नहीं कहां से ये आ जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। अभी तक ठीक था, फिर सडनली 10 साल ज्ञान में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर सडनली कुछ हुआ और एकदम डाउन हो गया, अच्छे अच्छे भी। तो इसीलिए बहुत अटेंशन चाहिए कि हम कभी भी डाउन नहीं हो जाएं, किसी भी हालत में हम नीचे नहीं जाएं, उसी समय उसको ठीक कर दें। जैसे ही लग रहा है मैं डाउन हो रहा हूं, और हम लोग डाउन होने का मुख्य कारण है कोई हमें शक्ति दे, कोई हमें दृष्टि दे, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आजकल कहता हूं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बनो, अपनी खुद की शक्ति अपनी परमात्मा से लेते रहो, डिपेंडेंट नहीं बनना है। कोई वो रहेगा तो दे रहा है, नहीं रहेगा तो नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए क्या करें, खुद की शक्ति खुद लें, राइट हैंड पूरा लें हाथ, और अपना दबा, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरा पार्ट बहुत अच्छा, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना। अंदर इंडिपेंडेंट, बाहर इंटरडिपेंडेंट, दोनों कैरेक्टर चाहिए। लोगों से काम भी कराना है पर अंदर स्टील जैसा बनना है, स्टील, इमोशनल नहीं बनना, स्टील। किसी ने कहा बहुत अच्छा किया, ठीक है, किसी ने नहीं बोला बहुत ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़े मेरे का।
तो एक और टूल हमें मिल गया, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक और अमोघ शस्त्र हमें भ्राता जी से मिला। हम इन सब धारणाओं पर अंगद के समान अटल रहेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए हम भ्राता जी को धन्यवाद करते हैं। एक मिनट साइलेंस।